Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्ययत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः सस्तेन इन्द्रो वृधस्रवाः सस्तेन पूखा विश्ववेदाः सस्तेनस्तार्क्षो अरिष्टरेमिः सस्तेनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं मांडुक्य उपनिषद के विषय में, जो अथर्ववेद का ब्राह्मण भाग का है। यहां पर भगवान भाष्यकार ने दो मंगलाचरण किया दो श्लोकों में, कि ऐसा मंगलाचरण किया कि अन्यत्र ऐसा नहीं मिलता है। कोई भी ग्रंथ देखिए, ऐसा मंगलाचरण नहीं मिलेगा भगवान भाष्यकार का। इस दो मंगलाचरण के द्वारा जो मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्रों में है, उसका तात्पर्य को प्रतिपादन कर दिया। तो तात्पर्य का कथन होता है, स्वरूप का जो कथन किया जाता है, उसमें दो प्रक्रिया होती है। एक तो प्रक्रिया विधि मुख से होती है, दूसरी क्या है, निषेध मुख से। विधि मुख कोई होता है भाप रूप धर्मेण वस्तु प्रतिपादनम विधिमुखम, भावरूप धर्म होता है, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म में भाव है, ये ब्रह्म का स्वरूप सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, अनंत का अर्थ अपरिचिन्न। तो एक प्रक्रिया ये हुई जिसको अध्यारोप भी बोलते हैं, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो ब्रह्म अपना स्वरूप है वो निष्प्रपंच है, प्रपंच उसमें नहीं है, प्रपंच नाम रूप, तो नाम रूप से रहित है, उसका प्रतिपादन एक भाव धर्म से होता है। दूसरा क्या है, निषेध मुख से, अभाव रूप धर्मेण वस्तु प्रतिपादनम निषेध मुखम, जैसे बोलते अशब्दम, अनणु हूँ, अस्पर्शम, ब्रह्म में स्पर्शादि नहीं है, नेति नेति, ना ब्रह्म में कार्यता है ना ब्रह्म में कारणता है, न च तस्य कार्य कारणम च विद्येते। तो दो प्रकार का मुख होता है, दो प्रकार की प्रक्रिया, एक है विधिमोक, दूसरी है निषेधमोक। तो प्रथम मंगल श्लोक में भगवान भाष्यकार विधिमोक से ब्रह्म का प्रतिपादन किया, वही शुद्ध ब्रह्म माया में उपहित होकर के ईश्वर हो जाता है और अंतकरण में उपहित होकर के उसका नाम जीव हो जाता है, और वही जीव जागृत अवस्था में गया, अभिमान किया, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, विश्व हो जाता है, और सपनों में गया तो तेजस हो जाता है, तेजस, और सुसुप्त में गया तो उसका नाम प्राज्ञ हो जाता है, ये व्यष्टि में हुआ, और समष्टि में क्या है, विराट है, सूत्रात्मा है, स्वप्न के समष्टि ही माने, उसको हिरण्यगर्भ ही बोलते हैं, और सुसुप्ति भी जो कारण है, कारण तो भाई समष्टि माया है, तो माया में उपहित कौन हो गया, ईश्वर हो गया। तो तीनों कैसे हैं, एक तुरीय चैतन्य ब्रह्म में परिकल्पित है, उपाधि भी है और उपहित भी है, अवस्था भी है और अवस्था के अभिमानी भी है, जागरण सपना सुसुप्ति ये भी तुरीय चैतन्य में परिकल्पित है, तद अभिमानी भी परिकल्पित है, विश्व तेजस और प्राज्ञा है ना, व्यष्टि में समष्टि में विराट, सूत्रात्मा और कौन ईश्वर, ये सब कैसे हैं, शुद्ध ब्रह्म में प्रज्ञान ब्रह्म में परिकल्पित है, माया को लेकर के अवस्था को लेकर के ये यहां पर बता रहे हैं प्रथम मंगल श्लोक में। तो इसलिए इसका हम प्रतिपादन करते हैं। प्रज्ञानांशु प्रतानैः ही वो ब्रह्म कैसा है, प्रज्ञान बताए, प्रज्ञान प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम, ब्रह्म का स्वरूप हो गया प्रज्ञानम, ब्रह्म मंत्र है। तो ब्रह्म में प्रकृष्टता क्या है, अपरिछिन्नता है, उसमें कोई विकार नहीं है, जन्म स्थिति आदि कोई विकार नहीं है, ऐसा जो कुटस्थ है वो हो गया प्रज्ञान। और अंशु कह दिया, अंशु प्रज्ञानांशु प्रताने ही, अंशु मतलब यही है, रश्मि को कहते अंशु, जैसे सूर्य की रश्मि है सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं, सूर्य की रश्मि, इसी प्रकार से ब्रह्म की रश्मि क्या है, ब्रह्म की रश्मि यही है चिदाभास, चिदाभास, और उसका प्रतान प्रतान कह दिया, उसका विस्तार सर्वत्र है, जैसे सूर्य की रश्मि सर्वत्र विस्तृत है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म का जो चिदाभास है सर्वत्र व्याप्त है और एक साथ होता है, एक साथ सूर्य हो गया बिंब, जितने जल है उतने प्रतिबिंब हो जाते हैं, और एक एक करके नहीं होते हैं, युगपत प्रतिबिंब की अनुभूति होती है, जैसे आकाश मान लीजिए, आकाश है, आकाश आकाश सर्वत्र व्याप्त है, और घड़े को रख दिया तो घड़े में क्या हो गया, घटाकाश आ गया, तो घटाकाश की जो व्याप्ति हुई घट में, एक साथ हुई कि एक एक करके हुई, हाँ एक साथ हो जाती है, तो घट को लेकर के घटाकाश में परिचिन्नता आ गई है ना, दरिद्रता आ जाती है परिचिन्नता होने पर, जैसे बाहर के आकाश में बहुत सामान आप रख सकते हैं, कितने ही बोरी रख दीजिए रख सकते हैं आप, लेकिन घर का आकाश में घट के आकाश में उतना नहीं रख सकते आप। घट रूप उपाधि का परिणाम परिमाण जितना होगा हाँ उतने चने रख सकते हैं। बाहर के आकाश में तो कितने भी चने रख दीजिए, बोरी की बोरी रख सकते हैं, लेकिन घटाकाश में नहीं रख सकते, 5 किलो 10 किलो है। तो हाँ इसी प्रकार से जो है जिसको हम मैं बोलते हैं, मैं का स्वरूप इतना भर लेना है, शरीर जो दिख रहा है ना, अपना स्वरूप तो बाहर भी है ना, शरीर को मैं बोल दिया तो परिचिन्नता आ गई। शरीर में अहम बुद्धि होने पर परिचिन्नता आ जाती है। ये जो अहम का स्वरूप जब तक शुद्ध नहीं होगा, मैं जब तक अपरिचिन्न को नहीं पकड़ेगा, तब तक दरिद्रता रहती है। और अहमता देखो कैसे स्वप्न में कैसे बदल जाती है। अहमता जो मैं बुद्धि बदलने में समय नहीं लगता है। आप खा पी कर सो गए, आप दरिद्र हो गए सपनों में, है कि नहीं? तो सपनों के शरीर में मैं बुद्धि हो गए कि नहीं? शरीर वही होता है अपना जिसमें अहम बुद्धि होती है ना? शरीर वही होता है अपना, जैसे बाहर के शरीर बहुत सारे घूम रहे हैं, वो अपना शरीर है क्या? नहीं है। क्यों? उसमें मैं बुद्धि नहीं हो रही है ना? इसी प्रकार ब्रह्मलोक तक जाएंगे, वहां पर भी अहम बुद्धि हो रही है, तो अहम बुद्धि का विषय क्या होगा? परिचिन्न हो गया, ठीक है ना भाई? शुद्ध को जब तक अहम नहीं पकड़ेगा है ना, तब तक परिचिन्नता नहीं जाती है, तब तक सुखी पना दुखी पना नहीं जाती है। इसलिए यहां पर बोलते हैं प्रज्ञान अंशु प्रतान ही, प्रज्ञान का जो अंश है चिदाभास, उसकी व्याप्ति सर्वत्र है। वो क्या करता है? कहते हैं देखो, स्थिर चरो निकरो व्यापी भीर, जागृत में जीवात्मा भोग करता है, स्थूल का भोग करता है ना? शुद्ध ब्रह्म ही है ना, ये अंतकरण में आकर के क्या बन जाता है? विश्व बन जाता है। ये बता रहे हैं कि जीव पना शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है, जीव शुद्ध ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये बता रहे हैं। स्थिर चर निकर व्यापी भीर, स्थिर हो गया कौन? आपका स्थावर जो है वृक्ष आदि, और चर हो गया जंगम मनुष्य आदि, निकर मतलब समूह, चराचरात्मक जितने भी प्राणी है उसमें इसकी व्याप्ति है। ब्रह्म की व्याप्ति सर्वत्र है, ब्रह्म व्यापक है, बाकी कैसे है? व्याप्य है, व्याप्य। तो ब्रह्म की व्यापकता कैसी है? ब्रह्म की व्यापकता इस प्रकार समझ लो, व्यापक वही होता है जिसका तादात्म्य सर्वत्र है, वही व्यापक होगा। जैसे मिट्टी से घड़े बनते हैं, घट में किसका तादात्म्य है? मिट्टी का ही तादात्म्य होता है, दूसरे का नहीं हो सकता। अरे घड़े में रख देंगे कपड़े को, अथवा जल को रख देंगे, तो जल का तादात्म्य नहीं है, जल को तो निकाल भी सकते हैं, फिर भर भी सकते हैं दूसरा जल, लेकिन मिट्टी को आप निकाल नहीं सकते। तो मिट्टी का तादात्म्य होने से घट में व्यापक कौन है? मिट्टी होती है ना? इसी प्रकार समुन्द्र में जाइए, देखो समस्त तरंगों में कौन व्याप्त है, कौन व्यापक है? जल हो गया व्यापक, तरंग हो गया व्याप्य। उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज में ले लो, समस्त चिंगारियों में कौन व्याप्त है? हाँ तेज, अग्नि, अग्नि की व्यापकता है, चिंगारी की नहीं है ना? और अपने शरीर में घटा लो वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये हो गए मुख्य प्राण, 5 हो गए है ना? एक उप प्राण भी होता है, जानते हैं ना, नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय, ये 5 होते हैं उप प्राण है ना? मुख्य प्राण 5, उप प्राण 5, 10 प्राणों में ये वायु ही व्याप्त है ना, वायु की व्यापकता रहेगी। पृथ्वी जल तेज आकाश में ले लीजिए, समस्त घटाकाशों में है ना, समस्त जो है मठाकाशों में व्यापक कौन है? एक सामान्य आकाश है ना, महाकाश बोलते है ना, महाकाश। ये महाकाश नाम भी पड़ता है किसको लेकर के? ये घटाकाश को लेकर के उसका नाम क्या पड़ेगा? महाकाश। नहीं तो नाम कुछ नहीं है, हो गया ना। जैसे भी आपका नाम पिता है, किसको लेकर नाम पड़ा? तब हो गया ना, माता भी ऐसा नाम पड़ गया। एक पुत्र ना हो तो आपका नाम कैसे पड़ेगा माता पिता? इसी प्रकार उसका नाम पड़ेगा ईश्वर। किसको लेकर के? जीव को लेकर के। आप जीव है वो हो गया ईश्वर, और जीव का नाम खत्म हो गया तो ईश्वर का नाम भी खत्म है कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर घटाकाश नाम पड़ गया, घट परिचिन्न आकाश का, और उसका बाहर आकाश क्या बोलते हैं उसको? महाकाश। समझ में ना। इसलिए सामान्य आकाश ही समस्त घटाकाशों में व्यापक है, व्याप्त है। उसी प्रकार सपन में चले जाओ भैया, है ना, कि मन ही क्या बन जाता है? लड्डू बन जाता है, थाली बन जाता है, चम्मच बन जाता है, सब कुछ बन जाता है कि नहीं। तो स्वप्न समस्त पदार्थों में मन व्यापक है, मन से अतिरिक्त, वासना से वासित मन के, मन से अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। इसे प्रतिभाषी में ले लीजिए, रस्सी में जो सर्प आदि की भ्रांति होती है तो सर्प आदि पदार्थों में व्यापक कौन है? रस्सी है। रस्सी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे पर्दे में चित्र दिखता है, समस्त चित्रों में पर्दा ही है, पर्दा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समझ में ना। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि चिदाभास की जो शुद्ध ब्रह्म चिदाभास हो गया, जीव हो गया, इसकी व्याप्ति सर्वत्र है। वो संबंध बनाता है, जीव संबंध बनाता है जिस विषय का भोग करना चाहता है ना। इसी को आगे बता रहे हैं, देखो, व्याप्य लोकान भूत्वा भोगान स्थविष्ठान। ये जो लोक है, लोक हो गया विषय, विषय के साथ संबंध बनाता है चिदाभास। अरे संबंध नहीं हो तो क्या आपका भोग होगा? संबंध के बिना, जैसे मैं पुस्तक को देख रहा हूं, पुस्तक के साथ मेरा संबंध हुआ कि नहीं? होगा ना। असंबंध क्या है? ये संबंध ज्ञानात्मक संबंध होता है, ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी संबंध नहीं है। ये मान लेना, मान लेना, हो गया ना। क्या मान ले जाता है संबंध को? संबंध वास्तविक नहीं होता है आत्मा का। कहां संबंध होता है भाई? जैसे ना एक लड़का एक लड़की को कुंडली देख लिए है ना, कुंडली मिल गई तो विवाह कर दिए है ना, तो मान लिया कि नहीं? ये पति है, ये पत्नी। अब मानना है कि मानने से अतिरिक्त तो कुछ है क्या संबंध? बोलो, आजकल कुंडली देखते भी नहीं आजकल विवाह में, है ना। तो चाहे कुंडली देखो या ना देखो, मान लेना बस, मानने से ही संबंध होता, नहीं माने तो कोई संबंध नहीं। संबंध वास्तविक नहीं होता है। जैसे मान लो भाई दर्पण का, दर्पण का क्या संबंध होगा आपके मुख से? बोलो, कोई संबंध है ना? आपके घर में दर्पण है, एक दर्पण को देख करके कोई सुखी होता है अपने मुख को देख करके? अभी बाल पका नहीं है, है कि नहीं? तो है, तो अपने चेहरे को देख करके कोई सुखी होता है? आप कोई दुखी होता है? बाल पक गया, झुर्रियां पड़ गई शरीर में, हो गए कि नहीं? तो कोई आदमी सुखी होता है अपने मुख को देख करके, और कोई आदमी दुखी होता है। दर्पण से पूछो भाई, हाँ तुम किसके हो? सुखी आदमी के हो कि दुखी आदमी के हो? दर्पण क्या बोलेगा? हम तो किसी के नहीं है ना। कितने आदमी देख करके चले गए कि हम तो जैसे थे, कोई संबंध नहीं बनता है, हो गया ना। इसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं ना, जो वास्तविक संत महापुरुष होते हैं, इसका संबंध किसी से नहीं होता है। कहाँ होता है कि नहीं भाई? पूर्व शरीर में जिसका संबंध था वो तो छूट गया, माता पिता भी छूट गए, लेकिन आप पहले जन्म भी कितने भी शरीर प्राप्त थे, है ना, ये आत्मा विलक्षण है कि नहीं बोलो। आत्मा का संबंध तो बनता ही नहीं है किसी से, आत्मा को कोई तो पकड़ ही नहीं सकता है। इतना तो वेदांत सुनने से पहले समझ लेना चाहिए कि आत्मा किसी की नहीं होती है, पकड़ में आती नहीं है, है ना, सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए, तब जो है आगे बढ़ता है पाठ, है ना, कोर्स चलता है तब जाकर के, है ना। जैसे संत महापुरुष का संबंध किसी से नहीं होता है, बन ही नहीं सकता है, होगा ना, इसी प्रकार आत्मा का परमात्मा का संबंध बन ही नहीं सकता किसी से, सच में कि नहीं। तो जिसका संबंध किसी से बन नहीं सकता है, जो किसी का नहीं हो सकता है, वो किसका होगा बताओ, सबका होगा, क्या समझ। जो किसी का नहीं होता है वो सबका होता है, परमात्मा किसी के नहीं है और सबके है कि नहीं बोलो, है विचार कर देख लीजिए, है ना, पापी के भी है और पुण्यात्मा के भी है, भक्त के भी है और ज्ञानी के भी है कि नहीं, हो गया ना। जो किसी का नहीं होता है वो सबका होता है, इसलिए भक्तों को कभी कभी भ्रांति हो जाती है, अरे हमारे महाराज जी ना हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुमसे क्या प्रेम करेंगे, तू प्रेम मान रहे तो झूठा है, तुम्हारी भ्रांति है ना, तो संत लोग किसी से वास्तविक प्रेम हो गया ना, लेकिन किसी से प्रेम तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके पास जाएंगे हाँ तो आपको एक दिव्य की अनुभूति होगी, ये बात तो सही है ना। भक्त का हृदय यदि सच्चा हो तो वहां पास में जाकर बैठेगा, सान्निध्य को प्राप्त करेगा, एक अनुभूति अलग होती है। इसलिए अनुभूति अलग होती है कि संत का हृदय क्या होता है, सरल होता है, उसका ना राग होता है ना उसका द्वेष होता है, वास्तविक प्रेम तो वही होता है, मतलब व्यवहार में, है ना। तो कहना क्या है यहां पर कि संबंध तो आत्मा का वास्तविक बनता नहीं, मान लिया जाता है, इसी प्रकार यहां पर मान लेता है। देखो बोलते हैं व्याप्य लोकान, विषय के साथ व्याप्ति मतलब संबंध बन जाता है, मान लेता है कि मेरा संबंध मेरा ही है वस्तु, तो क्या करता है, भोगान भुक्त्वा, भोगान भुक्त्वा, भोग को भोग करता है, विषय को भोग करता है। भैया भोग मतलब क्या, एक सुख दुख का जो अनुभव होता है ना, मुझे सुख हो रहा है यही भोग है, मुझे दुख हो रहा है यही भोग है, सुख दुख की अनुभूति यही भोग है, भोग दूसरा कुछ तो नहीं होता है ना। चक्षुर आदि इंद्रियों के माध्यम से आप विषय का भोग करेंगे, लेकिन जो इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता होते हैं ना, उससे अनुग्रहित होकर के ये जीव भोग करता है, हो गया ना भाई। चक्षु से आप देखेंगे विषय को, पुष्प बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रकाश ना हो तो बाहर का आप क्या करेंगे, आंख खोलते रहो अंधेरे में तो प्रकाश रूप जो देव है, हो गया ना, ये आपके ऊपर जो अनुग्रहित ना करे, है ना, तो भोग कैसे होगा बताओ, है। लेकिन जो हमको देवता, हम लोग जो देवता को भूल जाते हैं, होगा ना, जिससे अनुग्रहित होकर के इंद्रियों के माध्यम से हम भोग करते हैं, है ना, ऐसे अनुग्राहक देवता को हम तो भूल जाते, दोष होगा कि नहीं होगा, है ना, इसलिए उसका उपकार हमारे ऊपर है, इसलिए उसकी प्रार्थना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, ऋण चुका जाता है। चलिए यहां पर ये समझना है। तो जागृत अवस्था में जो चिदाभास भोग करता है जीवात्मा, है ना, स्थूल पदार्थ को करता है, स्थूल देवताओं से अनुग्रहित बाह्य इंद्र के द्वारा करता है। तो इसलिए यहां पर भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्थविष्ठान, स्थूल को भोग करता है, स्थविष्ठ का अर्थ स्थूल, और फिर कहां चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है भी। तो पुनरपि धिषणा उद्भासितान कामजन्यान, कहते हैं धिषणा मतलब बुद्धि, बुद्धि में वासना पड़ी है, पूर्व में जो कर्म हुआ है, कर्म से प्राप्त जो वासना है, वासना से वासित क्या है, हमारी धी है, हमारी बुद्धि है। तो वासना से वासित जो बुद्धि है मन, वो क्या बन जाता है स्वप्न में? सूक्ष्म विषय बन जाता है। वही मन सब कुछ बन जाएगा, विषय भी बनेगा और मन विषय भी बनेगा। विषय का जो ज्ञान है ना, लड्डू भी मन बन जाएगा और लड्डूकार वृत्ति भी मन बन जाएगा, समझ में ना। अब मन भी चक्षु, स्वप्न में दिखता है कि ना आंख से, है ना। तो चक्षुरादि इंद्रियां तो लीन हो गई मन में, एकीभूत हो गई। तो चक्षु कहां से आ गई? मन ही, मन सब कुछ बन जाता है। तो ये कह रहे यहां पर, धिषणा उद्भासितान कामजन्यान। ये देखो, काम मतलब कामना, अविद्या काम कर्म, हमारी अविद्या जैसी है, कामना जैसी है, कामना पूर्वक जो कर्म हुआ है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, है ना। ये अविद्या काम कर्म के अनुसार वशीभूत होकर के चिदाभास स्वप्नावस्था में जो सूक्ष्म विषय है उसको भोगता है, हो गया ना। अपनी इच्छा के अनुसार जो है आप स्वप्नों को नहीं देख सकते हैं। जैसी आपकी कामना हुई है, जैसा पाप पुण्य आपको हुआ है पहले से, उस पाप पुण्य के अनुसार ये स्वप्न अभिमानी जो है, जिसका नाम तेजस है, वो सूक्ष्म को भोग करता है। देखो व्यक्ति एक ही है, जागृत में जो था व्यक्ति ना, जीवात्मा देवदत्त, वही देवदत्त स्वप्नों में भी देखता है, दूसरा नहीं है।